भारत ने ईरान और इसराइल के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है। इसमें अमेरिका और कतर के प्रयासों की सराहना भी भारत ने की। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है और कहा है कि बातचीत एवं कूटनीति का कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि ईरान और इसराइल के बीच बढ़े तनाव का वहां रहने वाले भारतीयों पर भी असर पड़ा है। सैकड़ों लोग वापस लौट आए हैं। जम्मू कश्मीर के कई छात्र ईरान में पढ़ाई के लिए गए थे, जिनमें से अधिकांश भारत लौट आए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने युद्ध विराम की खबरों का स्वागत किया, साथ ही इसके लंबे और स्थायी चलने की उम्मीद जताई।
हम तो चाहेंगे कि ये सीज फायर जो है जल्द से जल्द लागू हो और बना रहे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का मुद्दा ये रहा कि हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको वापस लाना था।
जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर राजनीति फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर राज्य के दर्जे की बहाली के लिए उन्हें विधानसभा भंग करने की जरूरत पड़ेगी तो वह उसके लिए तैयार हैं। एक समाचार पत्र में छपी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने ये बातें कहीं।
अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूंगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियां जो है अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं।
आपातकाल के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आज संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए प्रधानमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की आलोचना की। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,
जब मोदी जी ने तय किया कि 25 जून को संविधान हत्या दिन के रूप में मनाया जाएगा, तब भी ये सवाल बार बार उठता था। और चूंकि ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आया था, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती, और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है।
भारतीय जनता को मौलिक रूप से लोकतांत्रिक बताते हुए अमित शाह कहते हैं,
भारत की जनता मूल से ही लोकतांत्रिक विचारों की है। हम अलग अलग विचारों को, अलग अलग विचारधाराओं को और अलग अलग मतों को सम्मान देने वाले लोग हैं। ये हमारी हजारों साल की संस्कृति है।
अमेरिका ने भारत में रहने वाले और यहाँ की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में भारत में अपराध, आतंकवाद और दुष्कर्म की घटनाओं का जोखिम बताया गया है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत इसको लेकर सरकार पर बरसते हुए कहती हैं,
आपकी विदेश नीति इतनी विफल है कि जिनको आप गले लगाए, जिनके आप गले पड़ गए, आपने नमस्ते ट्रंप से हाउडी मोदी तक करा डाला, उनके नारे तक लगा डाले, उनका प्रचार प्रसार तक कराए, वो आपके खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और भारत सरकार की ओर से एक शब्द नहीं, कोई आपत्ति नहीं।
महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी अक्सर सरकार को घेरते रहती है। इस पर सुप्रिया सुनेत कहती हैं,
डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम महिला अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं, यह हमारी विफलता है और इस पर सवाल उठाना मुझे लगता है विपक्ष का ही नहीं, आपका, हर व्यक्ति का इस देश में काम है। लेकिन अमेरिका उस पर ट्रैवल एडवाइजरी इशू करे और उस पर यह कहे कि बिल्कुल जाना अनसेफ है और बिल्कुल ये कहे कि वहां पर अकेली महिला को जाना नहीं चाहिए, और उस ट्रैवल एडवाइजरी के बहुत सारे खामियाजे हैं, उस ट्रैवल एडवाइजरी का खामियाजा निवेश है, पर्यटकों का कम आना है, आए हैं हमारे के पर्यटन क्षेत्र का बिल्कुल ठप हो जाना है, उसके बहुत सारे खामियाजे हैं। और दिक्कत इस बात की है कि आप भारत के साथ यह सलूक कर रहे हैं।
इधर प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि उनकी सरकार ने भारत की धमक वैश्विक पटल पर बिखेरी है। अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी क्षेत्रों में अच्छा काम करने की बात कही। समाज सुधारक श्री नारायण गुरु से जुड़े एक कार्यक्रम में मंगलवार को बोलते हुए उन्होंने दलित पिछड़ा वर्ग के उत्थान को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया।
शिक्षा, संगठन और औद्योगिक प्रगति से समाज कल्याण के इस विजन की स्पष्ट छाप आज हम देश की नीतियों और निर्णयों में भी देख सकते हैं। हमने इनके दशक बाद इतने दशक देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। नई एजुकेशन पॉलिसी न केवल शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाती है बल्कि मातृभाषा में पढ़ाई को भी बढ़ावा देती है। इसका सबसे बड़ा लाभ पिछड़े और वंचित तबके को ही हो रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को आदिवासी समाज के लिए लाभदायक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं,
बीते 10 साल में आदिवासी इलाकों में 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय स्कूल खुले गए हैं जो जनजातीय समाज कई पीढ़ियों से शिक्षा से वंचित थे उनके बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने शिक्षा को सीधे स्किल और अवसरों से जोड़ा है।
भारत के शुभ्रांशु शुक्ला आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री बनने वाले शुभ्रांशु 7 भारतीय प्रयोग वहां करने वाले हैं। इस मिशन में उनके साथ हंगरी और पोलैंड के यात्री शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की इस टीम की अगुवाई नासा की महिला अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन कर रही हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।